नमो महापतंजाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्नाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय का परम सौभाग्य है कि श्री गौरी वेदांत समिति के वर्तमान आचार्य सभापति हम लोगों के बीच में यहाँ बन पड़े हैं। हम सभी लोग और दिनों से इच्छा कर रहे थे महाराज जी कब आएंगे। हमारे गुरु महाराज परमाराध्यतम से श्री गुरुपाद नित्य लीला पुरुषोत्तम विष्णुपाद अष्टोत्तम भक्ति प्रज्ञान के सुमहाराज ने इस मठ के केशव जी गौड़ी मठ की स्थापना और तब से वो प्रति वर्ष दो एक बार नहीं दो तीन बार आते और नहीं तो एक बार जरूर आते और एक महीना करीब करीब रहते और हम सब लोगों को भजन के लिए उत्साहित कर रहे हैं। महाराज जी भी चेष्टा करते हैं किंतु इन लोग उनसे भी हम लोगों का अनुरोध है कि ब्रज में भी बीच बीच में बताए और दो तीन दिन का काम नहीं समझा कर अंततः एक महीने तक यहाँ और भी तीन चार जगह में हम लोगों के मठ और हरिद्वार में भी हो गया एक महीने तक रहेंगे और बच्चों को जो ब्रह्मचारी इत्यादि हैं सबको उपदेश देंगे कि कैसे हम लोग हरि भजन में अग्रसर हो सकते हैं। वैष्णव के आने जाने से ही और उनके उपदेशों से ही सब कुछ ठीक चलता है, अन्यथा सब लोग निरुत्साहित हो जाते हैं। इसलिए महाराज जी पूज्यपाद महाराज जी से हम सभी लोगों का अनुरोध है कि कुछ दिन अधिक का प्रोग्राम करके यहाँ आए। अभी हम लोग सोच रहे थे जो 13 और 14 दो दिन को यहाँ रहेंगे किंतु दो दिन में एक दिन वैसे ही कट गया, आज का दिन रहा। सभी लोग चाहते हैं कि उनको अपने घर में हम ले जाकर कुछ उनका अभिनंदन करें और उनकी सेवा करें, सभी लोग उससे वंचित रह जाते हैं। मठ में भी दो तीन दिन तो हमने ऐलान कर दिया जैसे महाराज जी आएंगे तो भी सभी लोगों को पता नहीं चला कि वो भी लोग सुनेंगे तो बड़े दुखित होंगे, इसलिए कुछ अधिक दिन का प्रोग्राम। विशेष करके हम लोगों को भजन साधन में कहां त्रुटियां हैं, हम लोग चेष्टा करने पर भी कुछ हमारा भजन उन्नत नहीं हो पाता, मन भ्रमित रहता है, चित्त चंचल रहता है, अभी निष्ठा हुई कि नहीं हुई भजन राज्य में ये भी पता नहीं। इसलिए साधक को कैसे चलना चाहिए जो उसकी भक्ति निष्ठा में फिर रुचि और आसक्ति में क्रमशः होती है, ये सब कैसे होगा। हम लोग अपने पूर्वाचार्यों की सिद्धांत में विचार में कैसे प्रतिष्ठित हो सकते हैं और कैसे चैतन्य महाप्रभु जी जो स्वयं कृष्ण हैं वो विशेष एक करुणा करने के लिए जगत में और अपनी आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए ये जगत में आए थे राधा भाव और कांति लेकर के, जिसको रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथों में और उसके परवर्ती आचार्यों ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रील जी गोस्वामी इत्यादि ने, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इत्यादि ने जो वर्णन किया है, वो जो चैतन्य महापुरुष देने आए थे उसके प्रति हम लोगों की कैसे लालसा हो सकती है, हमारे अंदर तो कैसे है? इसके संबंध में पूज्यपाद महाराज जी अभी आप लोगों को कुछ बतलाएंगे। हम सबकी ओर से इनसे ये भी एक दिन का विषय नहीं है, बहुत दिनों का विषय है, तभी इनसे अनुरोध करेंगे संक्षेप में अपने सारगर्भित भाषण में हम लोगों को इस विषय में बतलाएं। पतितानां पावने
मुखं करोति वाचारं पङ्गुं रम्भयते गिरिशो यत्कृपातमानं श्रीगुरुं निहतारं नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्नाय गुरुभक्तिचे नमः। हे कृष्ण पूर्णासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कंतो राधा कंतो नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो
ज्ञान श्रीराम ने पढ़ा हुआ है, जिन्होंने कृपा करके ज्ञान राखा लेकर के हमारा ज्ञान का विवृत किया है, वही गुरुपाद नमस्कार करते हैं। तत्वदर्शन मिलता है, कृपा कर्म से। कृपा कर्म भी कौन है ये विचार भी मिलता है वैष्णवों से सज्जन से। इसलिए नायक को स्वीकार किया है। हम नायक इसको कहा जाए, हम नायक श्रुतय साक्षात ब्रह्म विद्येति विस्तृता गुरु परंपरा प्राप्त विश्व कर्तृति परंपरा। हम नायक को श्रुति बोल करके माना जाए तो ब्रह्म विद्या दी गई थी, गुरु परंपरा से ही ये तत्वदर्शन मिल सकता है, मिलना है भगवान को लेकर। ब्रह्मा जी नारद जी ऐसा करके गुरु परंपरा प्राप्त जो शिक्षा वही हम लोगों को आराधशाल कहते हैं नव प्रमेय तत्व। भक्तिविनोद ठाकुर ने एक श्लोक में बतलाया नव प्रमेय तत्व हम नाय प्राह रिमीह परम। भगवान श्रीहरि पर सकता है, उनको ही भजन करना चाहिए, आराधना करना चाहिए। चैतन्य महापुरुष के जो संप्रदाय गौड़ वैष्णव संप्रदाय, ये चैतन्य महापुरुष को लेकर के ही नित्यानंद प्रभु की कृपा से चैतन्य तत्व हम लोगों को मिलता है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं तत्व वस्तु, भगवान को साधन भजन कैसा किया जाए, वो चैतन्य महाप्रभु आकर के गुरु नहीं सीख रहा है। भगवान श्रीहरि परतत्व है, सर्वारज्य तत्व है, ये पहली वाला ही है नवप्रमेय। हरिह परम सर्वशक्ति, वो हरि सर्वशक्तिमान है। मायावादी जो विचार है वो लोग कहते हैं भगवान निराकार निर्विशेष निर्गुण निशक्ति, ऐसा कहते हैं। भगवान को कुछ विशेषता नहीं है, निर्विशिष्ट ब्रह्म को ही लेकर के चलता है वो लोग, तो भगवान को भी ऐसे ही बना। शास्त्र ने बोला है भगवान सविशेष है, सविशेष तत्व को लेकर के ही सब कुछ विचार कर रहे हैं। चेतन चरितामृत में एक श्लोक देखते हैं हम लोग, प्रायो बोलिय सविशेषमेव विचार ज्योति सति अंतताशन, प्रायो बोलिय सविशेषमेव। सविशेष और निर्विशेष ये दो तत्व आलोचना किया जाए तो सविशेष तत्व ही श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ बोलकर के माना जाए, ये सब बोला है चेतन चेतन। तो वो पॉजिटिव साइड है, तो पॉजिटिव साइड को लेकर के नेगेटिव साइड को बतलाना। चैतन्य महाप्रभु स्वरूप बतलाया, भगवत स्वरूप बतलाया, सब कुछ इसमें भगवान श्रीहरि परतत्व कैसा है, सर्वशक्तिमान तत्व है। जो भगवान अनंत शक्तिमान शास्त्र में निर्देश है, भगवान को निःशक्ति नहीं बोलना चाहिए। और जितना शक्ति है उसमें तीन शक्ति का परिचय मिला है हर एक शास्त्र, वेद वेदांत उपनिषद गीता भागवत, जितना शास्त्र है भागवत में ये तीन को लेकर के ही विचार किया है। पहले वाला जो शक्ति ये स्वरूप शक्ति, उसको अंधरंगा शक्ति भी कहा जाए, लादिनी शक्ति भी कहा जाए, पराशक्ति भी कहा जाए। दूसरी जो शक्ति वो शक्ति जीव शक्ति है, जीव शक्ति से जीव पैदा होता है, तटस्था शक्ति। और एक शक्ति माया शक्ति, ये तीनों को लेकर के विचार किया है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र गेखा तथा परा अविद्या कर्ण संगण्य तृतीया शक्ति ऋष्य, ये हर एक स्तन के ऐसे ये तीन शक्ति को लेकर के विचार किया है। तो सर्वशक्तिमान जो भगवान उन्होंने श्रीवरी है, अरतीर्दय ग्रंथिम वसना रूपमिति हरी, जिन्होंने जिनका जो भाषणारूप हृदय ग्रंथि है वो हरण कर लेते हैं उनको ही श्रीहरि कहा जाता है। श्री शब्द पहले दे दिया, क्यों, वही भगवान शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान, इसीलिए श्री शब्द पहले ही व्यवहार किया है श्रीहरि। केवल हरि बोलने से मालूम नहीं होता है भगवान सशक्ति है कि नहीं, लेकिन पहले श्री देने से मालूम होता है भगवान सशक्ति है। इसीलिए श्री जी को नाम पहले दे दिया, श्री जी राधा जी, राधा जी वही भगवान सर्वशक्तिमान है। भगवान का आकार भी है, निराकार कैसा है, जिनका कोई आकार नहीं है उनको ही निराकार बोल करके माना जाए, लेकिन भगवान तो ऐसा नहीं है, उनका तो आकार है ही है। वो आकार कौन है? यम श्याम सुंदरम अचिंत गुणस्वरूपम, श्याम सुंदर द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप उनका ही आकार है। ये कुछ प्राकृत कुछ नहीं है, अप्राकृत आकार है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारण वही बिल्कुल निर्गुण शब्द बोला गया नेगेटिव से। भगवान को कोई गुण नहीं है ऐसा बोला जाए तो भगवान तो नॉन एंटिटी हो गया। सत्व गुणान्वित जो तत्व है वही भगवान है, और भगवान को कितना गुण है? 64 गुण है। जो 4 गुण अधिक से अधिक है कोई नहीं देखता है। लीला माधुर्य गुण माधुर्य प्रेम माधुर्य बेनु माधुर्य ऐसा जो 4 जो ये है कोई अवतार नहीं है। तो भगवान साकार है, आकार तो यही है, सगुण है। ये जितना शब्द यहां पर बैठा है ये सब शब्द प्राकृत कुछ नहीं है, ये अप्राकृत शब्द है। भगवान खुद अप्राकृत तत्व है। जतु बाचुरी वर्तन्ति अप्रत्व मनसा च, ऐसा अपने समय बतलाया। भक्त को मन के लेकर के जो तत्व वस्तु पे नहीं पाया फिर घूम कर चला आता है, वही तत्व भगवान है। तो कुछ हमारा इंद्रिय जितना है ये इंद्रिय वृत्ति से वही भगवान को नहीं मिलना तो क्या किया जाएगा? तब हम लोग क्या करेंगे? साधन भजन करने के लिए शास्त्र में बतलाया प्रचेष्टा करना है। हमारा जो संबल है तो ये प्राकृत कुछ संबल है, इंद्रिय वर्ग जो है। भगवान को ऋषिकेश बोल करके मना जाए तो ऋषिक मीन्स इंद्रिय वृत्ति, तो ये भगवान से ही मिला है हम लोगों को, तो वो सब भगवत सेवा में ही नियुक्त करना है, तो उसको ही बोला है भक्ति वृत्ति। भक्ति ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते बोला है। तो भगवान को लेने का क्या है, चीज क्या है? मैं जो कुछ दे रहे हैं ये तो प्राकृत बोल करके मना जाए तो भगवान तो अप्राकृत है, तत्व वस्तु अप्राकृत है, तो अप्राकृत वस्तु को तो अप्राकृत वस्तु ही दिया जाए, तो प्राकृत वस्तु से उनको कुछ संतुष्टि नहीं होती तो क्या करना है? मेरा तो संबल ही प्राकृत चीज यही संबल है। शास्त्र ने ऐसा बतलाया प्राकृत को भी अप्राकृत नहीं हो सकता है, अप्राकृत तत्व को भू कदापि प्राकृत नहीं होता है, तो क्या किया जाएगा? मेरे पास तो संबद्ध है ये प्राकृत चीज कुछ तो वही दे रहा है। काय मन और वाक्य से भगवत सेवा, मेरा जो कुछ संबल है पथिया जो कुछ है ये सब कुछ तो प्राकृत है, भगवान को देने से ही भगवान तो नहीं लेते। वृत्ति जो है, सेवा वृत्ति जो है, ये भगवान को लेना है। वही वृत्ति के ऊपर विचार करते हैं भगवान, उसको ही श्रद्धा बोला जाए, वहां से ही भक्ति वृत्ति आ जाती है। ये कारण है ऐसा। और भगवान अखिल रसामृत मूर्ति है, शास्त्र में बतलाया रसो वैश रसम जेवायन लब्धानंदी भवती को जेवन्न तह प्रन्न जदेश आकाशो आनंदो न। तो भगवान कौन चीज है? आनंद सच्चिदानंद घन विग्रह। फिर भी भगवान रसो वैश रसमय विग्रह है भगवान, सबसे बढ़कर के कौन रस श्रेष्ठ है ये तो शास्त्र में बतला है। मेरा अधिकार नहीं है तभी सुनने में कुछ आपत्ति नहीं है। ये रस से ये रस अधिक है, ये रस से ये रस श्रेष्ठ है, ये सुनने में कुछ आपत्ति नहीं है। संत रस से दस रस श्रेष्ठ है, दस रस से क्या चक्र रस श्रेष्ठ है, चक्र रस से बचकी रस श्रेष्ठ है, उससे बढ़ करके एक रस है
और उससे बड़ा शांत है,
इससे बड़ा शांत है। तो वही है, वही जो रस है उन्नत उज्ज्वल रस जो है, जिसके बारे में जयदेव जी ने बतलाया यदि हरि स्मरण संयम होना कलाश विलास कलाश कुतूहलम मधुर कोमर कांत पदावली श्रेणु तदा जयदेव सरस्वती सब बतलाया। तो मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता है। धीर समीरे जमुना तीरे बसती बने वनमाली, कौन वृंदावन है क्या जमुना जी की क्या ये महिमा महात्मा है, कुछ हमारे लिए कुछ ये नहीं है। तभी कुछ सुनना पड़ता है, सुनने के लिए मैं तैयार है लेकिन समझ में नहीं है, ये दुख की बात है। तभी प्रचेष्टा करना है, अधिकार मेरा नहीं है, जब ये अधिकार दे दिया वैष्णव लोगों ने, अधिकार दे दिया गुरु वैष्णव लोग से कुछ मिला है लेकिन काम कुछ नहीं होता है, यही दुख की बात है। सर्वशक्तिम रसाधीन अखिल रसामृत मूर्ति ही भगवान है, प्रणाम किया है हरि गोस्वामी ने। अखिल रसामृत मूर्ति श्री मुर रुचि रुद्ध तारका पाली बलि तो श्यामा रलि तो राधा प्रयाण विधुर्जयति भक्तिरकम सिंधु ने ऐसा प्रणाम किया है। तत्व ललित श्यामा ललित राधा प्रयाण, राधा प्रयाण जो कृष्ण है, राधा प्रिय जो कृष्ण है, वही जो कृष्ण चंद्र कृष्ण विदु उनको जाय। तो परिचय कैसे दिया है? राधा प्रिय कृष्ण, ये मामूली बात है। अनुगत्य से ही सब कुछ करना पड़ता है हम लोग। विष्णु धर्म ये अनुगत्य, अनुगत्य का धर्म है, विशेषतः गौड़ीय वैष्णव धर्म ये अनुगत्य का धर्म है। अनुगत्य से ही सब कुछ मिल सकता है।
अनुगत्य कैसा होता है? और पहले आपने बताया सेवा वृत्ति के लिए, इसको
सेवा वृत्ति के लिए
अरे समझ में नहीं
करता। व्यवृत्ति के लिए सब कुछ करना पड़ा, वो ये अनुभवता है। गुरु वैष्णव लोग जो कुछ उपदेश दे रहे हैं बोल रहे हैं वो शास्त्र की निर्देश है, शास्त्र के निर्देश है। तो यही जीवन में प्रैक्टिस करना, अनुशीलन करना, वही वास्तव रूप में वही अनुभवता है। बहुत कुछ सुन लिया, बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया, ये अनुभूति नहीं है। अनुभूति जो है ये प्रैक्टिकल साइड है, ये थियोरेटिकल नहीं है। जो कुछ सुना है मेरा जीवन में प्रैक्टिस में आना चाहिए, वो ठीक श्रवण है, वास्तव रूप में वही श्रवण है। कुछ नहीं मानते हैं प्रैक्टिस में वो श्रवण नहीं है। बादशाह मुनि ऋषियों लोग सब लोग बैठे हैं एक सभा में, भागवत सप्ताह पारण हो रहा था। सुने तो सब कोई तो सुन लिया, लेकिन एक आदमी के लिए वैकुंठ से विमान है तो ये सब कोई सुन लिया लेकिन श्रवण अच्छी तरह से नहीं हुआ। क्यों? श्रवण मनन निरिध्यासन साथ ही साथ नहीं हुआ उन्हें। तो एक लोग जो बैठे थे सभा में, एक वंशदंड पकड़ करके, तो उनको ही श्रवण वास्तव रूप में हुआ। ये कैसा बात है? और एक आदमी सुन लिया लेकिन वैकुंठ से विमान एक ही आदमी के लिए आया, तो वो भी विचार करना है। समभाव श्रवण नहीं हुआ वहां पर। तो श्रवण इसको भी ठीक बोलना, प्रैक्टिकल साइड वो है जीवन में सब कुछ पालन करना, वही प्रैक्टिकल। सुनने से ही काम नहीं होगा। तो भगवान अखिल रसामर्थ मूर्ति है, हमारा मैं जीवात्मा, तो जीवात्मा में जीवात्मा का हर एक जीवात्मा का स्वरूप है, उसका तस्वरूप तस्व प्रेम में कुछ है, प्रेम का शब्द का भाव में है, उसी पर सब कुछ। मेरा जो फिक्स डिपॉजिट जो है कमती होने से लीचू वाला मिलेगा, और बहुत फिक्स डिपॉजिट होने से श्रेष्ठ जो भाव है वो भी मिल सकता है। लेकिन आत्मा स्वरूप जो है आत्मा स्वरूप से ही मिलेगा, वही कानून है। तो स्पेशल केस कभी कभी मिल सकता है, तो वो तो अलग चीज है। डबल ट्रिपल प्रमोशन तो सबके के लिए नहीं है, तो स्पेशल भी स्पेशल रहना चाहिए, स्पेशल करके रखना चाहिए। मैं तो साधारण साधक है, इसलिए मेरे लिए तो जनरल कोर्स जो है वही पकड़ना है, वही लेना है। स्पेशल ग्रेस सबके के लिए नहीं मिलता है, लिमिटेड फ्यू के लिए मिलता है स्पेशल ग्रेस। प्रसादन भजन में भी ऐसा हो सकता है। श्रीमद्भागवत एकादश स्कंध 11th कैंटो, मान लीजिए 12th चैप्टर में है कुछ वर्णना है, साधन भजन का कुछ जरूरत नहीं है अंदर। जिनका जितना सब कुछ मिला है ये सत्संग से मिला है, वर्णन किया है,
सत्संग
पढ़े हैं 11th canto 12th चैप्टर अच्छी तरह से पढ़िए। इसमें है भगवत कृपा से ही, साधु संतों का गुरु कृपा से ही सब कुछ मिले हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल उदाहरण भी दे दिया, एक दो उसमें कुछ अंतर है, प्रहलाद जी को वृत्राटू को कुछ स्पेशलिटी दिखलाया कुछ, लेकिन जितना ये है कोटी लोग को भी ऐसे कर दिया। हाँ, वो सत्संग से ही उनका ये मिला है सब कुछ, इसे लिखा है और देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इधर क्या है, अमनाय प्राह हरिमी परमम सर्वशक्ति रसावधि भगवान अखिल रसामृत मूर्ति है। तद विभिन्न जीवन भगवान से ही जीव पैदा हुआ है, तो एक है बद्ध जीव है, एक मुक्त है। मुक्त जो है वो भगवान के पास चला गया, और बद्ध जो है वो ये संसार में आ गया। लेकिन बद्ध और मुक्त जीव जो है उसको पहले एक विशेषण दे दिया, एडजेक्टिव दे दिया है, क्या नित्य, नित्य बोल करके एक विशेषण दे दिया, नित्य मुक्त और नित्य बद्ध। क्यों, काल सृष्टि के पहले वो घटना हुई, इसीलिए प्राकृतिक काल, प्राकृतिक जो काल वो सृष्टि के पहले हुआ, इसलिए नित्य शब्द बैठे नित्य बद्ध और नित्य जीवन प्रकृति कबलितं तद विमुक्तं स्वभावत बद्ध और मुक्त तद विमुक्तं वेदा वेद प्रकाशन भगवान के साथ ये जगत का संपर्क के बारे में बोल रहा है। वेदा वेद प्रकाश सकलम श्री हरि साधनम शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति साधन है। शुद्ध क्यों लगा दिया एक विशेषण, भक्ति बोलने से ही तो होता, शुद्ध शब्द एक लगा दिया क्यों, तो भक्ति इधर उधर होता है ना, शुद्ध भक्ति क्यों बोला है, विद्या बोल करके एक चीज है, इसीलिए शुद्ध शब्द बैठा है ना, विद्या बोल करके एक चीज है इसीलिए शुद्ध शब्द, वैष्णव पुण्य से ही तो सब होता है, फिर भी शुद्ध वैष्णव इसे लगा दिया, तो वैष्णव विद्या भी हो सकता है, विद्या वैष्णव भी हो सकता है, इसीलिए शुद्ध वैष्णव शुद्ध एक एपिक्स प्रेफिक्स लगा दिया। तो भक्ति भी ऐसा है, व्याख्या जैसे दिया है गोस्वामी जी ने, क्या क्लेश अग्नि शुभदा मुक्षता लोहदा कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी चर्चा, ऐसा अलग अलग करके सब व्याख्या दिया है भक्ति के बारे में, तो भी विचार करना पड़ेगा। चैतन्य चंद्रे दया पर विचार, विचार करीले चित्ते पावे चमत्कार, मंगल में है ऐसा, तो चैतन्य चंद्र का जो विचार है तो विचार अच्छी तरह से लेना है, तो ये विचार छोड़ दिया जाए तो कुछ नहीं मिलेगा, मेरे लिए कुछ नहीं है, और विचार लेकर के चलो तो तुम सब कुछ तुम्हारे आए, ऐसा मतलब है। सिद्धांत बलिया चित्ते ना करो अलर्स जहां वही ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानो, ये भी बतलाया, तो तत्व सिद्धांत जो है वो जरूरी है, जानना सीखना लेना दिल में। जिनका तत्व सिद्धांत कुछ नहीं हुआ उनके लिए साधन भजन भी नहीं हो सकता है, ये भी बतलाया शास्त्र में, सनातन शास्त्र में ये भी बतलाया। जिनका तत्व सिद्धांत नहीं मिला है उनको लिए कुछ नहीं है, साधन भजन कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए तत्व सिद्धांत जानना सीखना वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। बहुत कुछ पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन उसमें शिक्षा क्या है, उसमें मोरल क्या है, वो भी जानने चाहिए साथ ही साथ। यही बतला है, बहुत कुछ पढ़ लिया उसमें शिक्षा क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, वो भी जानना चाहिए। वही असली चीज है तत्व सिद्धांत। भक्ति जो है ये साधन है, और श्रद्ध क्या है, भगवत प्रेम प्रीति, वो श्रद्ध है। शास्त्र ने बतलाया संबंध वो भी दे प्रयोजन, ये तीन तत्व को लेकर के शास्त्र है। शास्त्र में हर एक स्थान पर ये चीज है, संबंध वो भी दे प्रयोजन, तीन को विचार किया है। वेद में भी है, श्रीमद् भागवत में है, हर एक स्थान पे है। ये साध्य साधन तत्व तो जैसा है वैसा संबंध पूरी दिया प्रयोजन भी वैसा ही बोला है। वो शास्त्र का मेन पॉइंट है, वही लेकर के शास्त्र हुआ है। अगर वो विचार छोड़ दिया जाए तब तो शास्त्र नहीं है, माइनस तत्व तो दर्शन तो कुछ नहीं है। तत्व दर्शन को समझाने के लिए आख्यान उपाख्यान की जरूरत हुआ है, ये बतलाया। तभी ऐसा जितना आख्यान उपाख्यान है वो सब प्राकृत है। कुछ आदमी ये सब बोल रहे हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत का जो आख्यान है उपाख्यान है वो ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत में जो तत्व दर्शन है, जितना आख्यान उपाख्यान है वो ऐसा मामूली है, ये नहीं बोलना चाहिए। तत्व दर्शन को समझाने के लिए कुछ उदाहरण एग्जाम्पल दिया, जैसा मंडल बना क्या आत्मान रथिनंग विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धि तु सारथिनि विद्धि मन प्रग्रहमेव। ये बतलाया समझाने की, लेकिन तत्व दर्शन पड़ा हुआ है, आत्मा भी है रथी भी है, वो दो तत्व दर्शन तो पड़ा हुआ है। वैसा है अग्नि मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशा श्रोत्रे वाग विवृताश्च वेदा वायु प्राणो हृदय विश्वमश्च पद्मं पृथ्वी चेष सर्वभूतांतरात्मा। एग्जाम्पल दिया है मिला करके, तो प्राकृतिक चीज के साथ अप्राकृत तत्व कभी एक नहीं हो सकता है। तभी दिग्दर्शन के लिए ऐसा है, ये दुनिया में जितना चीज जो है इसके साथ कभी तत्व दर्शन बराबर नहीं हो सकता है, समान है ये कभी नहीं बोलना चाहिए, उसमें भी अपराध हो जाएगा। मेरा मालूम नहीं है ऐसा कोई शास्त्र में है, द्वैपायन वेदों व्यास जी ने बोल रहे हैं, भगवान होते हुए शंकर शंकर साक्षात व्यास वो नारायण तथा ऐसा है तो भी बोल रहे हैं हे भगवान तुम्हारा जो रूप वर्णन कर रही है मैं क्षमा मांगना मेरा कुछ इधर उधर मतलब नहीं है। तभी वर्णना करते करते जब कुछ प्राकृतिक भाव आ जाए इसीलिए क्षमा मांग रहा हूं। विदोबैल जी ने बोल रहे हैं को तो कैसा विचार है तत्वदर्शन जिनको मालूम नहीं हुआ अच्छी तरह से जो कुछ बोला जाएगा उसमें कुछ गलती होगा जरूर होगा नहीं होगा तो ही भी करेगा इसीलिए प्रार्थना किया जाए साधु गुरु विष्णु को बस ऐसा प्रार्थना करना है भगवान को पास भी ऐसा प्रार्थना करना है मैं जो कुछ कर रहे हैं उसमें कुछ प्राकृत चिंता नहीं आता है ये भगवान तुम्हारा कृपा मेरे लिए जरूरी है ऐसा प्रार्थना करना है। तो मैं एक तो कुछ बोल दिया बोलने में बहुत कुछ गलती हो गया गलती हुआ तो आप लोग सब बैठे हैं तत्वदर्शी व्यक्ति हाँ मुझको क्षमा करना है क्षमा मांग रहे हैं
सेवन
मुखे जिया दो स्वयं
स्वयं
तो ये सेवन मुख जो वृत्ति है वही वृत्ति
सेवन मुख कैसे होता है
सेवन मुख कैसे होता है तो पूछना पड़ेगा जिन्होंने लिखा है उनको ही पूछना पड़ेगा वो भी तो क्या वो ही क्या दिल में होना चाहिए तब ना शिवानुवृत्ति जो है वास्तव है वो अनुभूति की व्यक्ति है अनुभूति से सब कुछ होता है सब कुछ मिलता है अनुभूति भी फिर भी जड़ अनुभूति अप्राकृत अनुभूति ये भी है अप्राकृत अनुभूति से ही सब कुछ मिलता है सब कुछ मिल सकता है वही बात है मेरे प्रार्थना है पद नारायण महाराज जी हम लोगों को कुछ उपदेश यही प्रार्थना
योगचंद्राय कृष्णाय कृष्णभक्ताय अभी पूज्यपाद महाराज जी ने 10वें तत्व के संबंध में बहुत ही सुंदर रूप से विवेचन किया
बहुत सुंदर जी मेरा बोली नहीं है इसलिए
भाषा केवल वाहन है घोड़ा जैसे और भाव है सवार जैसे यदि भाव ठीक है तो वाहन जैसा तैसा हो तो उसमें सर्वांग सुंदर होता है और जब चढ़ने वाला ही लंगड़ा बूढ़ा हो और घोड़ा खूब सुंदर हो उससे कुछ नहीं है इसलिए भाषा जो है ये केवल मात्र बात है, सुंदर भाव होना चाहिए, भाषा उसका अनुगमन कर। इसलिए महाराज जी के भाव बड़े सुंदर, भाषा को जैसे तैसे भक्त विनोद ठाकुर जी ने हम बीमार रोगियों के लिए दशमूल नामक औषधि एक आविष्कृत की है, बहुत अनुसंधान। उस बिना दशमूल का पान किए हमारा रोगी कभी नहीं दूर हो सकता और स्वास्थ्य नहीं हो। इसलिए सदवैद्य जितने होते हैं उसमें भी वैद्य चूड़ामणी जो होते हैं दशमूल की ही व्यवस्था
है।
महाराज जी ने हम लोगों के लिए, हम लोग वैद्य के पास में पहुंचे और वैद्य ने हमें दशमूल का ये लिख दिया कि दशमूल का तुम लोग से संस्कृत में दशमूल में भी इन्होंने बड़े सुंदर रूप से दशमूल को तैयार किया युक्ति के अनुसार, उसमें एक एक को का विचार ही हुई। एक बात बहुत अच्छी हुआ, तुम लोग समझाए या नहीं, इन्होंने एक विचार दिया भगवान क्या तत्व है, जीव का तत्व है, संसार क्या तत्व है और जो हम भगवान के प्रति सेवा करते हैं उसका क्या तत्व है, इसके सुंदर संबंध में सुंदर दिग्दर्शन मिलने तत्व ज्ञान की आवश्यकता बतलाई। किंतु इसके साथ साथ में एक बहुत मार्के की चीज बतलाई, क्या चीज बतलाई, जो वेद शास्त्र में जितने उपाख्यान इत्यादि हैं और श्रीमद् भागवत, इसको जड़ मत समझ लेना, ये केवल उदाहरण के लिए है। नहीं तो सब चौपट हो जाए, तो तत्व का ज्ञान ही नहीं था, नहीं समझे आप लोग, फिर से समझाता हूं। तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान है ये कृष्ण ही स्वयं भगवान, वो सर्वशक्तिमान, वो अखिल रसामित। जीव दो प्रकार के, एक बद्ध जीव, एक अनादि बद्ध और एक नित्य
नित्य बद्ध।
कोई अनादि नित्य बद्ध के लिए ही वहां पर नित्य बद्ध नहीं, नित्य बद्ध केवल दिया गया है, अनादि के लिए शब्द दिया गया है, नहीं तो इसमें यह दोष हो जाएगा कि जीव कभी भी मुक्त नहीं हो सकता जीव बद्ध, इसीलिए उसमें नित्यबद्ध शब्द देकर के उसकी व्याख्या की गई है। कि नित्यबद्ध का तात्पर्य ये मत समझो ये जीव नित्य काल बद्ध है, बद्ध था और बद्ध रहेगा, ऐसा मत समझो। जैसे नित्य मुक्त में ऐसा ही है, नित्यबद्ध पहले भी मुक्त था, नित्य मुक्त पहले भी मुक्त था, अभी भी मुक्त है, पीछे भी मुक्त है, इसको नित्य मुक्त। किंतु जीव के संबंध में जो यहां जो नित्य बद्ध दिया गया है, इसका तात्पर्य है अनादि काल से, काल के उत्पन्न होने के पहले से ही ये बद्ध है, इतना ही समझ। और भक्ति के द्वारा भगवान का प्रेम होता है, ये मोटा मोटी दस मूल बताए और प्रमाण के रूप में वेद उपनिषद अन्याय और अंत में भागवत सर्वश्रेष्ठ प्रमाण बताया। किंतु तत्व ही सब कुछ नहीं है, तत्व को दिग्दर्शन कराने के लिए, समझाने के लिए बहुत से उपाख्यान इत्यादि शास्त्रों में दिए गए। तो भागवत का जो उपाख्यान और जो लीलाएं जो वर्णन की गई है वो क्या
तत्व को दिग्दर्शन कराने के लिए ही है, ना उनका कुछ विशेष महत्व है। जैसे कोई उपाख्यान उन्होंने बतलाया, रथ इसमें सारथी मन, रथ शरीर और लगाम इंद्रियां और अवसर। रथी कौन इसमें है?
आत्मानम रथिनम।
आत्मानम का भी दो अर्थ, एक अर्थ से नहीं काम चलेगा।
आत्मा परमात्मा
न, मूल परमात्मा ही इसमें रथी। और अभी रथी बना हुआ ये जीव है, उसका भी अंतर्ज्ञानी सबका वो है, मूल रथियों का भी वो महारथी है। तो अपने को अभी रथी ये समझता है। ये जो उपाख्यान है या ऐसे और उपक, अब जैसे श्रीमद् भागवत प्रहलाद उपाख्यान, इसके बाद में नारद जी का उपाख्यान है, पहले इसके बाद में वृत्रासुर का उपाख्यान, और इसको पार करके नौवें स्कंद को पार करके दशम स्कंद में चलते हैं। ये सब लीला कथाएं हैं। अच्छे, ये जो उपाख्यान और जो लीलाएं हैं ये तत्व दिग्दर्शन के लिए है या तत्व दिग्दर्शन उन लीलाओं के लिए है, इसमें कौन सी बात ठीक है?
लीलाओं के लिए ही तत्व दिग्दर्शन
है,
इस फूल से सूक्ष्म में प्रवेश, इसलिए तो इतना
विराट। फिर से समझिए, यदि हम लोगों की भूल होगी तो महाराज जी सुधार लेंगे। महाराज जी के बात को ही मैं बदला रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा स्पष्ट करें, हमने जो समझा वो आप लोगों को
कुछ बात नहीं शास्त्र में जैसा है पढ़े हैं वही
वही वही वही इसलिए महाराज जी ने यही कहा, आख्यानों को लीला कथाओं को जड़ मत समझो। कभी कोई चीज जो गौण होती है पीछे से वही मुख्य होती है और मुख्य गौण हो जाता है। अभिसाधन के संबंध में भी भक्ति विनोद ठाकुर ने जैव धर्म में बतलाया, कभी कभी कोई चीज मुख्य रहती है वो गौण हो जाता है, गौण मुख्य हो जाता है। हम लोगों के लिए तत्व ज्ञान सबसे पहले अभी मुख्य है, हम जिस स्थिति में हम लोग ये मुख्य है, बिना इसके हम लोग एक इंच नहीं कर सकते। इसलिए सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करो महाराज, किंतु श्रीमद्भागवत उपाख्यान इत्यादि जो है श्रीमद्भागवत में कृष्ण की पूतनाघातन की, कृष्ण की रास लीलाएं, द्वारका लीलाएं इत्यादि या और बाल चरित्र इत्यादि सब तत्व ज्ञान को एक तरफ में रखें और इन लीला कथाओं को एक तरफ में रखें, दोनों एक तरह से अभिन्न है, यह बात ठीक है, एक दूसरे के पूरक है यह भी ठीक है, किंतु हम लोगों के अधिकार के अनुसार मैं समझता हूं कि इनका कुछ महत्व अपना अपना है। पहले तत्व ज्ञान होगा, किंतु तत्व ज्ञान होने से यदि यही तत्व ज्ञान सब समय के लिए नित्य हो गया तो फिर क्या होगा उसमें? ऐश्वर्य ज्ञान असल शिथिल प्रेमे, इसलिए बताए ज्ञाने प्रयास मुद्पाश्य नमंत, जीवंती सन्मुख रिता
ज्ञान प्रयासों में क्या तत्व दर्शन को बात दिया
है? नहीं, इसलिए तो कहते उसी में वो है, शायद नहीं उसके कारण ये सब अपने आप होगा, उसको छोड़ करके नहीं, वो अपने आप होगा और साथ साथ में जो तत्व ज्ञान में नहीं है, इसलिए तत्व ज्ञान महाप्रभु जी से और रामानंद से जहां तक वार्तालाप हुआ वहां तक अवश्यंभावी है तत्व ज्ञान, उसके बिना हमारी गाड़ी नहीं चल सकती।
किंतु वही तक समाप्ति है ऐसा नहीं, उसके बाद में जीव का स्वरूप कुछ प्रकाशित होता है और उसी के लिए ये सब कृष्ण की जो नित्य लीलाएं हैं उसको उभराते हैं। इसलिए दोनों की आवश्यकता है। इसलिए सिद्धांत बोलिया चित्ते ना परालोस या होते कृष्ण लागे सुधीना मनोस, और इसके बाद में तत्व ज्ञान संपन्न होने के बाद में सिद्धांतविद ऋषि अपने से उन्नत वैष्णवों का संग करने से धीरे 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 रागानुगा भक्ति की तरफ में प्रवेश हो सकता है, यदि कोटि कोटि जन्मों का उसका सौभाग्य। आज पूज्यपाद महाराज जी ने संक्षेप में जो हरि कथा हम लोगों को सुनाई, हम लोग बहुत श्लोक छटपटा रहे हैं, जल्दी से समाप्त हो बहुत से लोग समाप्त और 7 बजने को हो गया है। सब लोगों की बहुत तरह की अभिलाषा है। महाराज जी यदि कल रह जाएंगे तो और भी बहुत से लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ घरों में चले, और नहीं तो एक दिन ना है वृंदावन का बात दे देंगे, और नहीं तो कल ही यदि होगा तो कल ही जाने का स्थिर हम लोग चलेंगे। त्रिरात्रि वास करना वृंदावन में उचित समझते हैं महाराज जी, इसलिए कल हम लोग सवेरे 7:30 बजे के करीब में वृंदावन में जाएंगे, और वहां पर आप लोग अधिकाधिक ये सब कथाओं का रसा स्वादन
करेंगे।
हम लोग चले, आप लोग भी यदि मथुरा से भी कोई लोग जाना चाहते हैं तो आप भी जा सकते हैं। 16 और 17 3 दिन हम लोग महाराज जी रहेंगे। 18 तारीख को सवेरे वहां से स्थान करेंगे, फिर हम लोग उनसे अनुरोध करेंगे जो फिर जल्दी से कार्तिक महीने या उसके पहले या जन्माष्टमी के समय यदि आ सकें, अपना समय दे सकें, अपना बहुमूल्य तो बहुत बुरी के लिए
पुरुषोत्तम महीना में तो पूरी
हाँ, और पुरुषोत्तम महीना में क्या बोलेंगे
पुरुषोत्तम महीना
तो हम तो बोल नहीं रहे, हम तो इतने आदमियों का भाव लेकर के आपसे निवेदन मात्र कह रहे हैं। ठीक, तो
पुरुषोत्तम मास
पुरुषोत्तम महीना में हम लोग अभी संकल्प एक तरह से साधारण रूप में लिया है, जनरल रूप से लिया है, एक महीने हम लोग
जगन्नाथपुरी
में पुरुषोत्तम क्षेत्र में हम लोग रहेंगे, और वहीं पर पुरुषोत्तम महीना
हरिवंश।
एक बात उन्होंने और कहा, आप लोग याद रखें, भक्ति का मूल है जन्म का, भक्ति का मूल है, इसलिए साधु संग छोड़ करके श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन जितने भी हैं 64 प्रकार की भक्ति के, उनका मूल्य 0 के समान हो जाएगा। इसलिए साधु संग में नाम, साधु संग में श्रवण, साधु संग में साधन भजन, यहां तक कि यदि तीर्थों में भी वृंदावन में भी निवास करना है तो साधु संग के अनुगत्य में ही हम अनुगत्य भी उच्छृंखल ये भाव, जैसे विधि भक्ति को छोड़ करके रागानुगा उच्छृंखल मार्ग है, ऐसे ही हरि गुरु वैष्णव के अनुगत्य को छोड़ करके हरि भजन भी एक उच्छृंखल, इससे कुछ अधिक तत्व नहीं होता है, ये भी उन्होंने बताया। इसलिए हम लोग समझ बुझ करके हरि गुरु वैष्णव के अनुगत्य में करके हम लोग गुरु सेवा करें।
और एक बात महाराज ने कहा है, गुरु महाराज ने कि हमारा तो प्राकृतिक शरीर है, हम जड़ शरीर में, तो हमारे पास देने को कुछ नहीं, केवल इस प्राकृतिक शरीर से हमारे पास केवल सेवा वृत्ति हो सकती है कि भगवान का, तो उस सेवा वृत्ति को हम समझना चाहते हैं।
ये सेवा वृत्ति आत्मा की वृत्ति है, और वो सब में किसी न किसी रूप में वो है, किंतु अभी अशुद्ध रूप में। वैष्णव संघ में गुरु जी की कृपा से, भगवान की अहति की कृपा से इन्होंने बतलाया, संघ के द्वारा नाग नागा
सत्संगे नहीं दैत्य
गर्तेया, ये सब जितने हैं सत्संग की महिमा के वजह से ही साधु भगवान की तरफ में आए हैं, साधक भजन किए हैं, गुरु पदाश्रय किया है, सब कुछ ये साधु संघ के ऊपर में ही होता है। इसलिए चैतन्य चैतन्य में भी कहा गया भक्ति का जन्म मूल ये अभी नहीं, अंत से प्रारंभ से लेकर और अंत तक, अंत तक माने सिद्ध होने पर भी, यहां तक कि रजनी सिद्धि लाने पर भी, वहां पर भी यह अनुगत्य है। इसलिए बिना अनुगत्य के न तो साधन में, न भजन में और न तो सिद्धि में किसी प्रकार से फल देगा। इसलिए हम लोग साधु संघ में रह करके उनके विचारों को ग्रहण करके अपनी सेवा वृत्ति, ये शरीर स्थूल है, इंद्रियां भी स्थूल है, इसलिए वहां पर अतः कृष्णामादि न भवेत राज्यम इंद्रिय सेवन मुखो, आत्मा की वृत्ति है। अभी विषयों में वो कृति लगी हुई है, शरीर में कृति लगी हुई है। साधु संघ की कृपा से, गुरु और भगवान के अहत की कृपा से वही शुद्ध हो करके विषय जे प्रीति अच्छे जे हमार
सही मतलब
सही मत माने वही प्रीति निकल करके शुद्ध हो करके भगवान के चरण, उसी को भगवान ग्रहण कर, उसी से इंद्रियों के ऊपर में भगवान का नाम रूप गुण लीला ये सब की स्फूर्ति। इसीलिए नाम करते समय नाम के प्रति सेवा वृत्ति, उसी प्रकार से श्रवण में श्रवण को भी भगवान समझ करके और उसके प्रति सेवा की। प्रसाद पाते हैं हम लोग तो हम प्रसाद की सेवा करते हैं, प्रसाद खाते नहीं, उसी प्रकार से हरि कथा की सेवा करते हैं हम हरि कथा सुनते नहीं हैं, हम हरि नाम करते हैं तो हरि नाम नहीं करते हैं, हम हरि नाम की सेवा करते हैं। ऐसे ही सेवा की प्रवृत्ति गुरु और वैष्णव की कृपा से मिलती है, यह इसी को भगवान ग्रहण करते हैं, इंद्रियों की वृत्ति को, इसमें इंद्रियों को और ये सब को। अभी महाराज जी को दो एक जगहों में जाना है, इसलिए आज हम लोग यहीं पर समापन करते हैं एक महामंत्र।
Oh, my God.